हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। झलक आदित्य साइट पर पहुंच चुके थे। हल्की सी धूप उस अधूरे लेकिन आधुनिक स्ट्रक्चर पर पड़ रही थी। सामने विशाल कांच की इमारत, अंदर सैकड़ों इंजीनियर, टेक्निकल एक्सपर्ट्स और रिसर्चर अपने अपने सिस्टम में डूबे हुए थे। आज झलक किसी बिजनेस वुमन से कम नहीं लग रही थी। ब्लैक पैंट सूट, बाल हल्के से बंधे हुए, हाथ में टैबलेट और आंखों में वही तेज जो सिर्फ सपने देखने वालों में नहीं, उन्हें पूरा करने वालों में होता है। अंदर कदम रखते ही हलचल बढ़ गई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। झलक ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी चाल में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। रोबोटिक आर्म सेक्शन का स्टेटस? उसने सीधा सवाल किया। प्रोजेक्ट हेड तुरंत आगे आया। मैम, 78% असेंबली कंप्लीट है। AI मॉड्यूल का इंटीग्रेशन आज शाम तक हो जाएगा। झलक ने टैबलेट पर डेटा स्क्रॉल किया। उसकी नज़रें हर डिटेल पढ़ रही थीं। AI मॉड्यूल में जो लेटेंसी इशू था, उसका क्या अपडेट है? उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन सवाल तेज। इंजीनियर थोड़ा चौंका। मैम, हमने उसे 0.8 सेकंड से घटाकर 0.3 सेकंड कर दिया है। झलक ने तुरंत जवाब दिया, मुझे 0.1 चाहिए। ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट के लिए है, यहाँ परफेक्शन से कम कुछ नहीं चलेगा। पूरा फ्लोर एकदम शांत हो गया। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। उसे पता था झलक जब इस मोड में होती है तो कोई समझौता नहीं करती, इतना तो वो उसे समझ चुका था। झलक आगे बढ़ी। वो हर सेक्शन में गई, क्वालिटी टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर लैब, हार्डवेयर यूनिट, डिज़ाइन स्टूडियो। एक जगह उसने देखा कि दो टीम मेंबर्स किसी कोड को लेकर बहस कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? उसने सीधा पूछा। एक ने कहा, मैम अगर हम सेफ्टी प्रोटोकॉल बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। झलक ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोली, स्पीड बाद में बढ़ाई जा सकती है, लेकिन सेफ्टी में एक भी गलती कंपनी को 500 करोड़ से सीधे जीरो पर ला सकती है। पहले सेफ्टी लॉक करो। दोनों ने तुरंत सिर हिला दिया। फिर वो प्रोटोटाइप के सामने जाकर रुकी। वो मशीन, उनका सपना, एक हाईटेक ह्यूमनॉइड रोबोट जो मेडिकल, इंडस्ट्रियल और डिफेंस सेक्टर में काम आ सकता था। झलक ने खुद उसके सेंसर को एक्टिवेट किया। रन डेमो। रोबोट की आंखों में नीली रोशनी जली। उसने सटीक मूवमेंट के साथ सामने रखा ऑब्जेक्ट उठाया। झलक ध्यान से हर माइक्रो एक्शन देख रही थी। मोटर कैलिब्रेशन थोड़ा और स्मूथ चाहिए और वॉइस रिस्पॉन्स में इमोशनल टोन जोड़ो। ये मशीन नहीं, फ्यूचर है। पूरी टीम उसकी बात नोट कर रही थी। फिर झलक सबके सामने खड़ी हुई। ये सिर्फ 500 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारी पहचान है। अगर ये लॉन्च हुआ तो हमारी कंपनी सिर्फ मार्केट लीडर नहीं बनेगी, हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट करेंगे। लेकिन याद रखो, कोई शॉर्टकट नहीं। उसकी आवाज़ में जुनून था। हम सबसे अमीर तभी बनेंगे जब हम सबसे बेहतर होंगे। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर पूरे फ्लोर में तालियां गूंज उठीं। आदित्य उसकी तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में गर्व साफ था। झलक ने धीरे से कहा, डेडलाइन 15 डेज, मुझे हर 3 दिन में रिपोर्ट चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो छुपाना मत, हम टीम हैं। वो मुड़ी, लेकिन जाते जाते एक बार फिर मुड़कर रोबोट को देखा। उसकी आंखों में सिर्फ बिजनेस नहीं, उसके दादा का सपना था, जो झलक ने उनकी आंखों में इस वक्त पढ़ लिया था जब पहली बार वो उसे CEO की कुर्सी पर बैठा रहे थे। झलक को उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि असल में हो रहे इस फैसले के पीछे उसके दादाजी अपनी पोती से क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। उन्होंने सिर्फ उसी उम्मीद को अपने दिल में संजो कर रखा था। वे चाहते थे कि उनका बेटा उनका ये सपना पूरा करे, लेकिन वो सपना अधूरा रह गया था और वे उसे खो बैठे थे। उसके बाद से उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के पीछे भागना लगभग छोड़ ही दिया था। लेकिन जब आदित्य राणा के प्रोजेक्ट की डिटेल और उसकी गहराई उन्होंने झलक को समझाई, तब झलक ने उसे पूरी तरह से सीरियस ले लिया था। अपने दादा का सपना पूरा करने का उसने उसी पल दृढ़ निर्णय ले लिया था। फिलहाल आदित्य आज पूरी तरह से झलक से इम्प्रेस था। जिस प्रोफेशनल तरीके से झलक ने सारी चीज़ों को हैंडल किया, हर टीम वर्क को चेक किया, हर छोटी बड़ी डिटेल पर ध्यान दिया, वो वाकई उसकी तारीफ करना चाहता था। लेकिन झलक का चेहरा देखकर वो खुद को रोक लेता, क्योंकि झलक ऐसा कोई मौका ही नहीं देती थी कि आदित्य खुद आगे बढ़कर इस तरह की कोई बात कर सके। इसलिए वो शांति से उसके साथ काम करता रहा। बीच बीच में वो भी कुछ लोगों के साथ हर एक टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करने लगा था। फिलहाल अब काफी देर हो चुकी थी। महीनों जैसा लंबा दिन बीतते बीतते शाम हो गई थी। तब झलक ने आदित्य को देखकर कहा था कि वो अब अगले 2 दिनों तक नहीं आ पाएगी, आपको ही आगे का सारा काम संभालना होगा। झलक जो हर वक्त ट्रेंडिंग न्यूज फॉलो करती थी, उसे खबर मिल चुकी थी कि जो ऑक्शन 6 दिन बाद होने वाला था, वो अब 2 ही दिनों के अंदर होने जा रहा था। ये खबर सुनकर झलक पूरी तरह से अंदर तक हिल गई थी। उसने तुरंत आदित्य को सारी जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा था कि अगले 3 दिनों तक वो बहुत ज्यादा बिजी रही थी, इसलिए वो यहाँ साइट पर चेक करने के लिए नहीं आ पाएगी। मिस्टर राणा, आपको अकेले ही आना होगा। ये सुनकर आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। उसके बाद झलक और आदित्य साथ निकल गए और एक बार फिर जब वे दोनों कॉफी शॉप के पास से गुजरे तब आदित्य ने कॉफी पीने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि ये सोचकर कि अगले 2-3 दिनों तक वो झलक से मिल नहीं पाएगा, उसे थोड़ा अजीब सी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उससे कुछ छूट रहा हो। उसने सोचा, क्यों ना थोड़ा सा वक्त और झलक के साथ गुजार लिया जाए। क्या मैं कॉफी पी सकता हूँ? आप अपनी कॉफी का बिल बिल्कुल खुद पे कर दीजिएगा, मैं अपनी कॉफी का खुद कर लूंगा। ये सुनकर झलक ने ना तो मना किया ना ही कोई विरोध जताया। तब उसकी भी थोड़ी हिम्मत बढ़ गई और वो जाकर कॉफी ऑर्डर करने लगा। दोनों ने अपनी अपनी कॉफी ऑर्डर कर दी। उसी वक्त वो छोटी सी मासूम बच्ची अपने पिता के साथ वहां आई हुई थी। जैसे ही उसने झलक को देखा वो तुरंत दौड़कर उसके गले लग गई और बोली, अरे दीदी आप आ गई, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। आपको पता है आपने मेरा बर्थडे कितना ज्यादा खास बना दिया था। वो छोटी सी बच्ची शायद 7 साल की रही होगी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ने उसे उम्र से पहले ही थोड़ा बड़ा बना दिया हो। वो बड़े बड़े बच्चों की तरह समझदारी भरी बातें कर रही थी। खुशी से उसने कहा, देखिए मैंने वही फ्रॉक पहनी है जो आपकी वजह से मुझे मिली थी। झलक ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, वही मुस्कान जिससे उसके गालों में पड़ते डिम्पल और भी खूबसूरत लगने लगे थे। आदित्य लगातार उसे देखे जा रहा था। वो सोच रहा था, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। फिर ऐसा क्या हुआ है इसके साथ कि इसे आदमियों से ही नफरत हो गई है? जिस तरीके से इसने कहा था कि इसे अपनी जिंदगी में किसी भी आदमी को कभी नहीं लाना है, इसे किसी आदमी की जरूरत नहीं है, ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का कोई दर्द बाहर आने को बेचैन हो। मैं उसकी वो दर्द भरी आंखें क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ? क्यों मेरा दिल करता है कि उसके सारे दर्द अपने अंदर समेट लूँ और अपनी सारी खुशियाँ उसे दे दूँ? लेकिन फिलहाल वो सिर्फ इतना ही सोच सकता था। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो झलक के सामने अपने दिल की बात कह सके। जल्दी ही दोनों ने अपनी कॉफ़ी फिनिश की और एक बार फिर गाड़ी में बैठकर अपना सफ़र शुरू कर दिया। झलक ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को उस तूफान के लिए तैयार कर रही हो जिसका सामना करने वो जा रही थी। वो तूफान वाकई बहुत बड़ा था। एक ही दिन में झलक सब लोगों के छक्के उड़ाने वाली थी। वहीं दूसरी ओर इस वक्त उर्वशी खुराना और रणविजय खुराना सब एक साथ बैठे हुए थे। सभी के चेहरों पर किसी काली संतुष्टि जैसा भाव दिखाई दे रहा था। आकांक्षा भी उसी वक्त वहां मौजूद थी। सिद्धार्थ के घर में आने के बाद वे लोग काफी समय से वहीं रुके हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे।
तभी उर्वशी ने अचानक कहा, बेटा हम जानते हैं कि जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। अगर आप लोगों के साथ वो हादसा नहीं होता तो चाहे हमें कुछ भी करना पड़ता, सिद्धार्थ और आकांक्षा की शादी उसी दिन करवा देते। लेकिन सब कुछ उस झलक की वजह से बिगड़ गया। हमें तो पता ही नहीं चला कि उस लड़की ने कब सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब कुछ दांव पर लग गया। लेकिन हम जल्द ही उसका नाम भी जरूर पता लगा लेंगे। आखिरकार उस लड़की को भेजने के पीछे कौन हो सकता था, ये सच्चाई भी सामने आकर रहेगी।